તારીખ 23/3/1994 શ્રી સમયસાર કથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 18 મૂળ કેસેટમાં એ સાઈડમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે તથા અવાજ ખરાબ છે.
साधु की सिद्धि के लिए जो लोग प्रधानता में खड़े हैं ऐसे जीव को अभी की सिद्धि के लिए भी प्रधानता है. आगे की गाथा कही थी 16 नंबर की, क्योंकि व्यापारी जन अज्ञानी जन ऐसे ही समझते हैं. हम इसी प्रबंधों को दृष्टांत पूर्वक आगे कहते हैं 17-18 गाथा में कि प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है दर्शन ज्ञान चारित्र से. इस गाथा की टीका में विशेषता वो है कि अनुभव प्रधानता से आत्मज्ञान किसी भी अज्ञानी को सरलता से कैसे हो जाए, ऐसी एक बहुत सुंदर बात इस किताब में आई है. गाथा पढ़ेंगे. जो कोई पुरुष रायम जानी शब्दी टोटल अनुचर भी तुम पृथक चीज पयत्तेर एवं ही जीवराया नागव्य तरह शब्द अनुसंधन वेगों शोचेवदो मुख काम्य. टीका है अमृतचंद्राचार्य महाराज की. यथा भी कश्चित पुरुषो जैसे कोई पुरुष धन का अर्थी राजा को जाने कर श्रद्धांत राजा को जान करके श्रद्धांत करता है. ये ग्रंथ तो ऐसे लिखा है राजा को जानू करी श्रद्धान करे ताकि छे ताको बहुत यत्न करी अनुचरे ताकि इनकी सेवा करे. हिंदी भाषा में थोड़ी पुरानी हिंदी भाषा में लिखा है. भंडारे पूरी भंडारे नहीं है, कुछ हिंदी भाषा पुरानी है जो अभी चलती है शुद्ध हिंदी भाषा ऐसे नहीं है. दृष्टांत लिया है धनार्थी का, दृष्टांत लिया है धनार्थी को संसारार्थी को, क्योंकि संसार में मनुष्य को धन की मुख्यता उतनी है कि जितनी मुख्यता दूसरी चीज की नहीं है. इसलिए दृष्टांत भी धनार्थी का लिया है. सिद्धांत को समझाना है मोक्षार्थी का सिद्धांत समझाना है और दृष्टांत लिया धनार्थी का. क्यों? तो धन उपार्जन करने के लिए जो कितना भी साहस करता है, कभी भूख तृषा आदि का भी संशीलता करता है, नहीं लिखने लेता है, कुछ भी कर लेता है. और एक उर्दू उसमें से विचार मिलता है कि जब तक जीव धनार्थी होता है वह पुरुषार्थ नहीं होता है। संसारार्थ रहता है वहां तक मोक्षार्थी नहीं होता है, और जो मोक्षार्थी होता है वो संसारार्थी नहीं होता है। दोनों प्रतिपक्ष में है। संकेत मिलता है इस गाथा में से। निश्चय करो जैसे वो धमकार थे पुरुष बड़ा उद्यम करे प्रथम तो राजा को जाने, जानने में भी बड़ा उद्योग किया है दृष्टांत में कि वो राजा है। पीछे किसी का श्रद्धान कहे कि जो ये अवश्य राजा ही है, मैं धोखा नहीं खाता। ज्ञान से बराबर जानता है तो विश्वास आता है, बराबर जाने बिना विश्वास नहीं आ सकता। यहां का सेवन किए अवश्य गुण की प्राप्ति होगी, उतनी तसल्ली दी जाती है कि विश्वास करता है कि जिसकी सेवा करके मुझे अवश्य धन मिलेगा ही मिलेगा। पीछे पीछे का अनुसरण करे और फिर इसकी सेवा के लिए उसका अनुसरण करे, यानी सेवन करे, यानी आज्ञा में प्रवर्ते और ताको प्रसन्न करे और उसको प्रसन्नचित हो गया तो उसको धन मिलेगा। ये तो दृष्टांत बहुत सीधा साधा है, लंबा जी की आवश्यकता नहीं है। सब हमारे जन अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं। जो सिद्धांत है उसमें बहुत रहस्य है, तैसे ही अब सिद्धांत का की शुरुआत होती है। मोक्ष का अर्थ पुरुष करी प्रथम तो आत्मा को जानना। मोक्ष का अर्थ ही होकर के आत्मा को जानना, यानी जो मोक्षार्थी होता है उसको सर्वप्रथम कोई परिणाम आता है तो कौन सा आएगा कि मैं मेरे स्वरूप को कैसे अनुभव करूं। अनुभव में मेरे स्वरूप की जो प्राप्ति हो उस विषय जो है विवेक है, जोर है, संवेद है, वो मोक्षार्थी को पैदा होता है। जो मोक्षार्थी नहीं होता है उसको आत्मा से जानने के विषय में अनेक प्रकार का जानकारी का विषय बन सकता है, ग्रंथों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, किंतु उद्योग में नहीं होता। ये बहुत बड़ा बड़ी समस्या हो चुकी है हमारे यहाँ कि पुरुषार्थ कैसे हो। ऐसे तो पुरुषार्थ कैसे करना वो प्रश्न आता है, क्या पुरुषार्थ कैसे करे, जबकि पुरुषार्थ होता है हो जाता है, करना पड़ता नहीं है। करना पड़े तो अपने आप को बलात्कार करने के बाद होगी, तो होता नहीं है लेकिन हमको करना है, होता नहीं है लेकिन हमको करना है। ऐसे तो पुरुषार्थ की कोई परिस्थिति है ही नहीं, यानी पुरुषार्थ का ये स्वरूप नहीं है। पुरुषार्थ माने वीर गुण का परिणाम है जिसका स्वरूप अभिव्यक्ति इस प्रकार से है कि जो संवेद होता है, वीर रूप होता है, जोर आता है, वजन आता है, ऐसा प्रकार सहज कैसे बने। करना भी पड़े लेकिन सहज कैसे बने, तो सहज बने इसका नाम पुरुषार्थ है। इस मार्ग में, सम्यक मार्ग में, पर्याय के कर्तृत्व का मूल से निषेध है। कोई भी पर्याय कर्मे ये कर्तृत्व के जो परिणाम है ये स्वयं अज्ञान के और मिथ्यात्व के परिणाम है, यानी मार्ग से विरुद्ध है, असम्यक है, सम्यक नहीं है किंतु असम्यक है। अब ये तो कोई सत्ता है उधर कि मोक्ष मार्ग में जो आगे है उनको तो सम्यकता होने से उनको तो पर्याय का कर्तृत्व नहीं होता है, लेकिन जो मोक्ष मार्ग में नहीं आए हैं, जो इसके पहले वाली भूमिका में है, मोक्ष की भूमिका में है, आत्मार्थी की भूमिका में है, जबकि पर्याय बुद्धि छुटी नहीं है, जिसको पर्याय बुद्धि चालू रही है, उनको ये पर्याय का कर्तृत्व कैसे देंगे? वो करे ये करे वो करे ये करे ये आएगा ही आएगा, ये करने योग्य है ये नहीं करने योग्य है, विधि विषय में यही बात आएगी और पर्याय बुद्धि है। तो पर्याय बुद्धि होने के बावजूद भी पर्याय का कर्तृत्व नहीं होने ऐसी कोई व्यवस्था है परिवर्तन की क्या है? इस दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो ये मोक्षार्थी अगर कोई होता है तो मोक्ष की अवस्था में भी मोक्ष इसीलिए नाम दिया है, मोक्षार्थी होने के कारण से मोक्ष ऐसा मोक्ष का इच्छुक उसको मोक्ष कहता है, इच्छुक कहो या आर्थिक कहो एक ही बात है। तो ये नाम इसलिए दिया गया है कि उनको भी अपने इस भूमिका के आनुषंगिक जैसे भी परिणाम हो, जिस प्रकार के भी परिणाम हो, वो सहज सहज पैदा हो जाए ऐसा बनता है। तो पिछली चर्चा में एक विषय थोड़ा सा वो आया था कि जिसको जिस काम का जितना बड़ा त्याग होता है उसी के अनुपात में उसका प्रयत्न सहज चलता है। तो जिस संसारी जीव ने सीधा ही मोक्ष का टारगेट बना दिया कि हमें पूर्ण शुद्धि चाहिए, कितनी एक कण भी कलंक कसाई कलंक का एक कण भी हमें नहीं चाहिए, इतना बड़ा काम जिसने जुम्मेवारी से लिया हो वो अपनी जुम्मेवारी निभाने के लिए इसके परिणाम बिना कर्तृत्व इतने जोर से उठने लगते हैं, उतने जोर से उठने लगेंगे कि एकदम स्वरूप प्राप्ति की भावना में तीव्र संभावना में आ जाता है। तो किस पदार्थ का अवलोकन से सर्वेद शुद्धि रहे ऐसा एक दृष्टिकोण यहां इस मुमुक्षु की भूमिका की विचारणा में पैदा हो जाता है और इस पर पदार्थ की खोज चलती है कि वास्तव में जिस पदार्थ का अवलंबन लेना है अवलंबन आते हुए सहज शुद्धि के परिणाम चालू होते हैं, वृद्धिगत होते हैं और पूर्णता तक पहुंचते हैं, वो पदार्थ कैसा? स्वरूप प्राप्ति की अपूर्व भावना के वसात इसकी एक अपूर्व जिज्ञासा भी पैदा हो जाती है। उस जिज्ञासा की भूमिका का वर्णन करते हुए गुरुदेव परमानंद सार के 190 नंबर के वचनामृत में ऐसे कहते हैं तो जैसे कोई जंगल में वाघ से पीछे पड़ गए हो, उसको दिल आएगी क्या? कोई सर्प को जंगल में क्या घर में भी देख लेगा तो उसको नींद आएगी क्या? हाँ, पूरा सर्प को नहीं देखे, कुछ भी उसको देखने पर नींद आएगी क्या अपने कमरे में? नींद का समय है और नींद क्यों नहीं आती है? ऐसे जिसको अपना स्वरूप की खोज जिज्ञासा में ऐसी परिस्थिति हो जाए कि उसको खान पीन में नींद में कहीं भी चैन रहे नहीं, ऐसे एक बेचैनी स्वरूप की खोज के पीछे चले उसी को जिज्ञासा कहते हैं। उन्हें के कैसे भी प्रकार के उद्योग रस निरस हो जाए, कहीं भी रस नहीं पड़े, उसी को इस भूमिका के मुमुक्षु की भूमिका के वैराग्य बताया है। वैराग्य माने क्या? घर छोड़ दे, धंधा छोड़ दे, वो बात इस भूमिका में नहीं है। क्या करो तो सभी राग उसको तो पड़ा है। सबसे पहले अपने स्वरूप की खोज के पीछे उतने परिणाम लगे कहीं भी रस नहीं आए। जैसे कुछ भी हो गए वो कैसा ही रहे, निरस परिणाम हो जाए, ऐसा बनता है। अगर खोज इस प्रकार की होती है तो संसार में भी कोई 25 साल का इकलौता लड़का गुम हो जाता है तो इसकी खोज के पीछे इसके माता पिता को नींद आती है क्या? खाना खाने में सुहाता है क्या? रात दिन इसकी चिंता लगी रहती है कि नहीं रहती है? तो ये चैतन्य इंद्र खो गया है, अनादि से खो गया है, मोक्षार्थी को इसका भान होता है तो इसके पीछे इसकी चिंता है वो इतनी गले लग जाती है, इतनी लग जाती है कि कहीं भी स्वरूप की खोज पूरी हुई बिना, यानी कि पदार्थ का निर्णय हुए बिना, भाव भाषण हुए बिना उनके परिणाम शांत नहीं हो सकते, बहुत अशांत रहते हैं, कहीं भी नहीं सुहाता है। इस प्रकार की भूमिका को मोक्षार्थी की भूमिका कहने में आती है। यहां तो आचार्य महाराज ने प्रकरण सिद्धांत ज्ञान का लिया है, ऐसे मोक्षार्थी को सामने रख करके, इसलिए इसका प्रकरण उतना नहीं चला है, क्योंकि ऐसा मोक्षार्थी विज्ञान कर सकता है, क्यों कर सकता है कि इस मोक्षार्थी को अपने आप में अपना स्वरूप की खोज करनी है, वो कहां से कैसे करेंगे, कैसे किस प्रकार से करेगा, कि अपना उसको भीतर में जो भी परिणाम आते हैं उस परिणाम क्या अनुभव क्या होता है, एक अनुभव पद्धति से अपने परिणाम का परिचय चालू हो जाएगा। परिचय एकमात्र पहचान की प्रक्रिया है, स्वरूप की पहचान इस स्वरूप खोज किया अंत है, और खोज के दौरान जो प्रक्रिया चलती है ये अपने आप का परिचय की चलती है। परिचय से पहचान आ जाती है। परिचय कैसे होता है कि अनुभव में आने वाले जितने भी हमारे परिणाम हैं वो दो जाति के परिणाम हैं। एक तो विभिन्न प्रकार के विभाव जाति के परिणाम हैं और एक ज्ञान लक्षण वाला स्वभाव जाति के भी परिणाम हैं। अगर उनकी जाति की पहचान हुई परिचय से तो दो के बीच में भेद ज्ञान होने का चालू हो जाएगा। हम शास्त्रीय अध्ययन से हम लोग अच्छी तरह जानने लगे हैं आज कि राग और ज्ञान भिन्न है और राग और ज्ञान के बीच में भेद ज्ञान करना चाहिए। समय काल की एक एक गाथा वेद ज्ञान का बोध देती है। एक भी अधिकार ऐसा नहीं है कि जिसमें वेद ज्ञान का प्रकरण नहीं चला हो। अधिकार के नाम अलग अलग है कि जीव अधिकार, अजीव अधिकार, सुंदर अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, कोई कुछ भी नाम है, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार। लेकिन मोक्ष अधिकार में मोक्ष की चर्चा नहीं चली है। मोक्ष अधिकार में प्रज्ञा छेड़ने वाले वेद ज्ञान की चर्चा चली है। समर अधिकार में भी वेद ज्ञान की चर्चा चली है। पुण्य पाप अधिकार में भी वेद ज्ञान की चर्चा चली है। पर जीव अधिकार में तो वही सुना रहे हैं जो अपने सामने प्रस्तुत गाथा है। वेद ज्ञान की इतनी पुकार है सारे समय साल में और हम अच्छी तरह हमारी बुद्धि के लिए इस विषय को करते हुए भी वेद ज्ञान का प्रयोग कितना चलता है थोड़ी तलाश कर लेनी चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय करना एक बात है, वेद ज्ञान करना दूसरी बात है। निवृत्ति होगी तो 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा भी स्वाध्याय हो सकता है, कोई करते भी होंगे। लेकिन वेद ज्ञान कितना घंटा होता है, अरे कितनी निमित होती है अंतर प्रयोग में और एक झांक करके अपने आप में तलाश करने का विषय हो जाता है। जो वेद ज्ञान निरंतर करने योग्य है, वेद ज्ञान कुछ एक दो घंटे करने योग्य नहीं है, वेद ज्ञान तो निरंतर करने योग्य है। अरे शुरू में नहीं होता है, वेद ज्ञान के प्रकरण को पढ़कर भी शुरू में होता है, इसका कारण क्या? एक समस्या है, क्यों नहीं होता है? हम करना चाहिए कर ऐसा जानते हैं, उसको आवश्यक समझते हैं, लेकिन होता नहीं है। अगर कृत्रिमता से करने लगते हैं तो भी टूट जाता है, लाइन चलती नहीं है, आपके परिणाम इधर उधर हो जाते हैं। क्या कारण है इसका? यही कारण है एकमात्र कि मोक्ष की कामना नहीं हुई है। मोक्षार्थी होता है उसको ऐसा नहीं होता है। जो मोक्षार्थी होता है उसको तो वेद ज्ञान की लाइन चालू होगी होगी और होगी। यही कहने का इस गाथा में, इस टीका में कौन बच्चा से बच सकता है या बचता है, इसको सब बहुत करी है। लेकिन मोक्ष द्वारा मान लेना हो तो प्रमाणिकता तो चाहिए, प्रमाणिकता से तो कोई चीज मिलने वाली नहीं है। जिस जीव को संसार के सुख के लिए कभी भी आशा और अपेक्षा नहीं हो, संसार की महत्वाकांक्षी जीवन की कोई चर्चा ही हमें नहीं करनी है। जिसको बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा हो, हमें ये होना है, वो होना है, पैसा वाला होना है या सत्ता वाला होना है या कुछ भी होना है, बड़ी इज्जत वाला होना है, इसका तो कोई विचार ही नहीं करना है। लेकिन अंत भी सुख की अपेक्षा और आशा न हो तब मोक्षार्थी पना प्राप्त होता है, ये कड़ी शर्त है। पूरे संसार को लाभ लगाने वाले बता रहे क्या कुछ नहीं चाहिए इस संसार में, क्योंकि संसार एकांत दुख मरे उसमें से क्या लेना है, क्या सकता है उसमें क्या किसी को मिल नहीं सकता। ऐसा जिसके पास ही बुरा हो तो उसको विचार ना है और कुछ भी उसकी अपेक्षा नहीं हो, आशा नहीं हो, तभी भी बरसाती हो सकता है। इसी तरह बरसात से संभव नहीं है, आप कहेंगे कि ये बात तो कभी नहीं है, कभी है तो बाल भी लेकर नहीं मेरे के सामने क्या तीन लोगों का नाच बनना है और संसार लेना है जो अपने के सवाल नहीं कर अपने आप को घर में कुछ लेना चाहिए, चाहे क्या चीज भी अगर हमारे सामने कठिन करने के लिए एक संसार और एक मोक्ष। बहुत आपके लिए अपने मजबूत कार्य करें हमारे आर्थिक कल्याण के कारण में ईमानदारी के कारण अपने हृदय के सतर्कता रविंद्र ईमानदारी के सतर्कता में तो मोक्षार्थी हो जाएगा। वास्तव ऐसा नहीं है, ये तो हमें गड़बड़ है। जो अपने आर्थिक कल्याण के विषय में ही जो मान है क्या थोड़ा कट्टर लगेगा, इसकी ईमानदारी का कौन सा भरोसा फिर किस प्रसंग में करने लाया क्यों बताइए। व्यस्त
के लिए संभव है,
व्यस्त
के लिए संभव है सरकार
लाभ मांग, हमें व्यस्त है और हमारी आत्मा है और हमें हमारे आत्मा चाहिए। हम क्यों बनाए हैं, हम तो व्यवस्थाओं का आगे हमारे राजा है कुछ धर्म आचार दृष्टि का हूं, ये तो सब पर्याय दृष्टि का विषय है। तो हमें आत्मा है, हमें हमारा आत्मा ही है, आत्मा की हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसे आत्मा के सेवन कुछ चाहिए उसे संसार चाहिए। तो वर्षा की भाई किसान अंदर वर्षा से नहीं है, किसान बात है और जो वर्षा की अगर उनका बात है सफलता नहीं प्राप्त हुई, ये होता ही मात्र कारण है कि भीतर में प्रमाणिकता नहीं रही है। अपने आप को पूछ लीजिए दूसरे को क्या पूछने का है, तो किसी को आगे बढ़ाने का एक प्रसंग नहीं है, अपने आप को बदल रहा है कि वास्तव में हम आत्मकल्याण करने के लिए पूर्व प्रमाणिक है
आपका विकल्प नहीं चल रहा है, ये बात है। जानना एक बात है, उसका अमलीकरण करना एक दूसरी